सुनैना को लगता था कि अभिमन्यु और इशिका की वजह से पार्थ उससे नफरत करने लगा था। इशिका के साथ रहते हुए पार्थ के जज्बात बदलने लगे थे। वो पहले भी अपने प्लान से पीछे हटना चाहता था, लेकिन सुनैना के चलते वो ऐसा कर नहीं पाया था। इशिका को जब सच का पता चला और सब बर्बाद करने के चक्कर में उसकी जान पर बनाई थी, तो पार्थ को बहुत अफसोस हुआ था। वो इसका कसूरवार सुनैना को भी ठहरा रहा था और उसके बाद से वो उससे बात तक नहीं करता था। राजवंश फैमिली को बर्बाद करने के लिए सुनैना ने राजवंश एम्पायर पर साइबर अटैक करवा दिया था। पूरी कंपनी का डेटा कॉपी किया जा रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 24 घंटे में राजवंश एम्पायर दिवालिया होने की कगार पर आ जाता। अभिमन्यु अपनी टीम के साथ मिलकर इस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने प्रोफेशनल हैकर्स की भी मदद ली थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस बीच इशिका ने किसी एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो इस काम में माहिर था। इशिका उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर बिजी जा रहा था। कम ऑन आशिका, कॉल रिसीव करो, आई रियली नीड यू, इशिका ने चहलकदमी करते हुए खुद से कहा। इशिका की ज्यादा देर तक अंदर ना आने पर अभिमन्यु बाहर चला आया था। पिछले 20 मिनट से इशिका आशिका को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, कुछ बात बनी, अभिमन्यु ने पूछा। किसी काम के चलते कॉल बिजी आ रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करती, फ्री होने पर कॉल बैक पक्का कर लेगी, इशिका ने अभिमन्यु के बाजू को सहलाकर जवाब दिया। वो समझ सकती थी कि इस वक्त अभिमन्यु के दिल पर क्या बीत रही है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी वजह से इशिका परेशान हो रही थी, ये भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, हमारी टीम ने उनके काम को स्लो कर दिया है। हालांकि वो पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो देख लेंगे। तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए, अभिमन्यु ने इशिका को समझाते हुए कहा। इशिका का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में अभिमन्यु को अकेले छोड़कर चली जाए। वो उसे मना करने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि आशिका ने कॉल बैक कर लिया था। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर मर्चेंट, किसी वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाई, कॉल के दूसरी तरफ से आशिका की बुझी हुई सी आवाज़ आई। आशिका की आवाज़ से इशिका उसे समझ गई थी। वो उसकी परेशानी का कारण भी पूछना चाहती थी, लेकिन फिलहाल सही वक्त नहीं था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे डॉक्टर मर्चेंट मत बुलाओ। आशिका, आई नीड योर हेल्प, राजवंश एम्पायर पर एक साइबर अटैक हुआ है, सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हो, क्या तुम प्लीज़ हमारी हेल्प करोगी, इशिका ने काफ़ी रिक्वेस्टिंग वे में कहा। अगर मैं तुम्हें डॉक्टर मर्चेंट नहीं बुला सकती तो तुम्हें भी मुझसे इस तरह रिक्वेस्टिंग टोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इशिका, सच में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी सिस्टम को तुम्हारे साथ कनेक्ट करती हूँ, आशिका ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। अगले 5 मिनट में राजवंश हेल्पायर का सिस्टम आशिका के सिस्टम से जुड़ चुका था और उसके हाथ तेजी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे थे। इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, वो जानती थी कि आशिका के लिए ये काम मुश्किल नहीं था। अभिमन्यु ने इशिका के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देखी तो उसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने इशिका से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये लड़की कर लेगी? इशिका ने उसी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया और शरारती लहजे में बोली, कभी डार्क वेब की टॉप हैकर ऐश का नाम सुना है तुमने? हाँ, लेकिन उससे कॉन्टैक्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है, हम यही चाहते थे कि उसके जरिए ही हम अपनी कंपनी के सारे सिक्योरिटी एनक्रिप्ट करें और उसे प्रोफेशनली हायर कर दें, लेकिन कई बार लगता है कि ऐश कोई इंसान ही नहीं है, लोगों को वो एक फेक डेटा लगता है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। मुबारक हो मिस्टर राजवंश, डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर अनामिका के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला था, और सक्सेसफुली दुनिया में एक शख्स और मौजूद है जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पाए, आशिका कोई और नहीं बल्कि डार्क वेब की टॉप हैकर ऐश है, इशिका ने बताया। अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, मानो वो यकीन नहीं कर पा रहा हो। ये ठीक उसी तरह था जैसे इशिका की हिडन आइडेंटिटी डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर अनामिका के तौर पर थी। तुम लड़कियां न जाने क्या करती रहती हो, इतनी सक्सेसफुल होकर भी अपनी पहचान छुपाने का क्या मतलब हुआ, अभिमन्यु थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। क्योंकि कई बार आपकी सक्सेस हजारों खतरे लेकर आती है, मैं तो फिर भी एक रिसर्चर हूँ, सोचो ऐश एक हैकर है, लोग उसका इलीगल तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान किया है उससे जुड़े खतरे उतने ही हैं। बस ये समझ लो, आशिका ने अपने दिमाग से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का हुनर हासिल किया है। इस दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आशिका की सच्चाई पता है, इशिका ने बताया। अभिमन्यु भी इस बात को समझता था, इशिका के डॉक्टर अनामिका होने की सच्चाई भी अब तक छुपी हुई थी, तो इसका एक ही कारण था कि वो इशिका को किसी खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता था। वैसे भी पार्थ ने उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। राजवंश एम्पायर पर साइबर अटैक हुआ था, जल्द ही ये न्यूज सब जगह वायरल होने लगी थी। अब केशव और राधिका को भी समझ में आ गया था कि अचानक अभिमन्यु और इशिका पार्टी से क्यों चले गए थे। केशव ने अभिमन्यु की मदद करने के लिए कॉल किया था, लेकिन इशिका ने उन्हें समझा दिया था कि अब उन्होंने मामले को संभाल लिया है। आशिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। उसने सबसे पहले डेटा को कॉपी होना रोका, उसके बाद में जो भी डेटा कॉपी किया गया था उसे उसने फिर से रिकवर किया और राजवंश एम्पायर से जुड़ी सभी फाइल्स की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। ये इतना आसान नहीं था। पूरे 24 घंटे तक आशिका बिना रुके काम कर रही थी। आशिका के बीच में जुड़ जाने की वजह से अभिमन्यु और इशिका भी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, हालांकि वो दोनों स्क्रीन के आगे से हटे भी नहीं थे। अगले दिन शाम के करीब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तब उन दोनों ने राहत की सांस ली। तुम्हें अब आराम करने के लिए जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, अभिमन्यु ने इशिका को सहलाते हुए कहा। हाँ, जानती हूँ देर हो गई है, लेकिन अभी एक जरूरी काम करना बाकी है। मैं प्राइवेट रूम में रेस्ट कर रही हूँ, तुम बाकी फॉर्मेलिटीज को संभाल लेना, इशिका ने जवाब दिया। उसने अभिमन्यु को हल्का सा हक किया और फिर सीधा अभिमन्यु के केबिन में बने प्राइवेट रूम में जा रही थी। भले ही सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन इशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी आशिका, खुद की परेशानी में तुम्हारी तकलीफ पूछना भूल गई थी, और तुमने भी बिना शिकायत किए मेरी मदद की है। हमेशा सोचा था कि तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दूंगी, पर खुद की परेशानियों में मौका ही नहीं मिला। इशिका तुरंत कमरे के अंदर आई और उसने आशिका को कॉल किया। वो अभी भी भूली नहीं थी कि जब आशिका ने कॉल किया था तब वो काफी उदास थी। वहीं इशिका के कॉल आने पर आशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कॉल रिसीव करके कहा, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे हैकर की लोकेशन का पता करना होगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे तो मुझे उस सिक्योरिटी को भी और टाइट करना होगा। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी, पर थोड़ा तो रिलैक्स करो, पिछले 24 घंटे से काम कर रही हो। हमारी टेक टीम ने फिर भी थोड़ा रिलैक्स किया था, लेकिन तुम लगातार काम कर रही थी आशिका, इशिका ने कैरिंग वे में कहा।
अब इन सबके आदत पड़ गई है, लोगों के लिए ये काम है लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। इशिका, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे होती हूँ तो लगता है कि बस इसी में मेरी दुनिया समा गई है, आशिका ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना मुस्कुराहट और ना ही किसी तरह की तकलीफ। आवाज़ हमेशा की तरह थोड़ी थकी हुई थी। आसपास भी एक दुनिया है आशिका, कॉल उठाया था तभी समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम है। बताओ मुझे क्या हुआ है, इशिका ने पूछा। आशिका की जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसका हालचाल भी पूछते थे। जब भी ऐसा होता था तो उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आशिका जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगी ताकि अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोक सके। उसकी ग्रेश ग्रीन आंखें इस वक्त आंसुओं से चमक रही थीं। आशिका ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों में बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ दोनों अपनी हिडन आइडेंटिटी के पीछे ही छुप कर नहीं रहते हैं। वैसे तो मैं भगवान में यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ मामले में उसने हम दोनों की किस्मत को एक जैसा बनाया है। क्या हुआ, क्या तुम्हें भी कोई सीक्रेट बिलियनर हस्बैंड मिल गया जो खुद को मेरी किस्मत से जोड़ रही हो, इशिका ने हल्का हंसते हुए कहा। आशिका भी मुस्कुरा दी। वो जवाब में बोली, नहीं, अभी कोई नहीं मिला और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो। मिसेस हिल का कॉल आया था, मिलने बुलाया है उन्होंने मुझे, कहती हैं फैमिली गैदरिंग है, जबकि उन्होंने कभी मुझे अपनी फैमिली समझा ही नहीं। समझ नहीं आता अगर मेरे डैड ने उन्हें धोखा दिया था तो उसका जिम्मेदार वो मुझे क्यों समझती है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर मैं उनकी खुशियों में प्रॉब्लम हूँ तो मुझे किसी ऑर्फिनेज में भेज देती, यहाँ सात समंदर पार लाकर अकेला छोड़ दिया, और अब कहती है कि फैमिली गैदरिंग है, मिलने आ जाओ। आशिका की बातें सुनकर ही इशिका उसके दर्द का अंदाज़ा लगा सकती थी। आखिर उसने भी इतने सालों तक मालविका को अपनी माँ समझा था। उसे भी समझ नहीं आता था कि आखिर मालविका क्यों उसे इतनी नफ़रत करती है। अगर वो आदर्श की नाजायज़ औलाद थी तो उसमें उसकी क्या गलती थी। इसी तरह सालों बाद मालविका भी इशिका से मिलने आई थी, तो इशिका को लगा कि अचानक उसे इशिका की परवाह होने लगी है। लेकिन जब वो उसके पास आई तो उसने इशिका को किसी के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया ताकि नक्श बिना किसी डाउट के आयशा से शादी कर सके। पुरानी बातें याद आते ही इशिका के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने कड़वाहट से कहा, ऐश, मालविका मेरी रियल माँ नहीं थी, ये मेरी ही गलती थी जो मैं उन्हें अपनी माँ समझ बैठी थी। मिसेस तृप्ति हिल तुम्हारी रियल मॉम है, उन्होंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। अगर उनसे मिलने जा रही हो तो सोच समझ कर जाना, क्योंकि सांप की फितरत में हमेशा डसना ही होता है, फिर चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार क्यों ना दो। यकीन तो मुझे भी उन पर नहीं है, ज़रूर अपने किसी फ़ायदे के लिए बुला रही होगी, पर इस बार वो सच में मुझसे अच्छे तरीके से बात कर रही थी। जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तभी कॉल करती है, पर इस बार तो पैसों की भी बात नहीं की, हो सकता है इस बार कुछ अलग बात हो, आशिका ने उम्मीद भरी नज़रों से कहा। हालांकि वो जानती थी कि हर बार की तरह तृप्ति उसका दिल तोड़ देगी, लेकिन फिर भी वो इशिका के सामने कहना नहीं चाहती थी। इशिका इस दर्द से गुजर चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि आशिका के साथ भी वो सब हो। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर भी सतर्क रहना,
मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हर बार की तरह बेझिझक होकर बता देना, आशिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। इशिका की तरह आशिका की जिंदगी भी आसान नहीं थी। अचानक एक बार आशिका और इशिका बहुत सालों पहले टकराई थीं। तब से इशिका उसकी एजुकेशन में हेल्प कर रही थी। इशिका के पास तो फिर भी राधिका का सहारा था, लेकिन आशिका के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी स्टडीज तक के पैसे दे सके। आशिका के बारे में सोचते हुए इशिका नींद के आगोश में खो गई थी। एक अच्छी खासी नींद लेने के बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो इशिका ने देखा अभिमन्यु उसके पास में ही सोया हुआ था। इशिका ने अभिमन्यु के फोरहेड पर किस किया तो उसने अपनी आंख खोली और कहा, चलो अच्छा है तुमने नींद पूरी कर ली, वरना कब से तुम्हें बताने का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी फ्रेंड ने सच में अच्छा काम किया है। क्या हम उसे हायर कर सकते हैं? वो अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आने देना चाहती है, वो किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस काम नहीं करती है, लेकिन तुम्हें जरूरत होगी तो वो हमारी हेल्प कर देगी, इशिका ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, पता चला ये सब किसने किया है? कहा ना तुम्हारी फ्रेंड ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने लोकेशन निकाली और हमने पुलिस को तुरंत ही अलर्ट कर दिया था। सुनैना राजवंश को मॉस्को में पकड़ा गया है और वही ये सब कर रही थी, अभिमन्यु ने बताया। सुनैना का नाम आते ही इशिका के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। इसी के साथ उसे अपने पुराने जख्म याद आ गए थे। सुनैना और पार्थ की वजह से ही इशिका ने अपने जुड़वा बच्चों को खो दिया था। क्या इन सब में पार्थ भी शामिल था? इशिका ने सर्द आवाज में पूछा। उसकी आवाज से साफ जाहिर था इशिका को पार्थ से कितनी नफरत थी। उसका बस चलता तो वो उसे पार्थ को उसके किए की सजा जरूर देती, पर अफसोस पार्थ उस हादसे के बाद गायब सा हो गया था, या यूं कहें वो उनके बीच था पर उनकी नजरों से परे।